नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के लिए प्रचार आज समाप्त हो गया। इस चरण में मंगलवार को 20 जिलों की 122 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। इस चरण में 3,70,00,000 से अधिक मतदाता, 136 महिला उम्मीदवारों सहित 1,302 उम्मीदवारों के राजनीतिक भाग्य का फैसला करेंगे। मतदान सुबह 7 बजे शुरू होगा और शाम 6 बजे तक चलेगा। 7 निर्वाचन क्षेत्रों में सुरक्षा कारणों से मतदान शाम 5 बजे तक किया जा सकेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रचार के आखिरी दिन राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और महागठबंधन दोनों के स्टार प्रचारकों और वरिष्ठ नेताओं ने अपने अपने पार्टी उम्मीदवारों के समर्थन में मतदाताओं को लुभाने के अंतिम प्रयास किए।
एनडीए की ओर से वरिष्ठ भाजपा नेता अमित शाह, राजनाथ सिंह, शिवराज सिंह चौहान ने कई चुनावी सभाएं की। जेडीयू अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी विभिन्न चुनावी रैलियों को संबोधित किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने महागठबंधन उम्मीदवारों के समर्थन में जनसभाएं की। वहीं राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने भी गठबंधन के उम्मीदवारों के समर्थन में कई जनसभाएं की। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में नीतीश कुमार सरकार के 12 मंत्रियों की राजनीति किस्मत का फैसला होगा। पहले चरण के चुनाव में 6 नवंबर को 121 विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ था। चुनाव के बाद बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों के लिए मतगणना 14 नवंबर को होगी। धर्मेंद्र राय के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, पटना।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देहरादून में उत्तराखंड के गठन के रजत जयंती समारोह को संबोधित किया। उन्होंने 8,140 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान श्री मोदी ने कहा कि 9 नवंबर का दिन उत्तराखंड के लोगों के लंबे संघर्ष और दृढ़ता का परिणाम है।
आज का दिन हम सभी को गर्व का एहसास करा रहा है। उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने वर्षों तक जो सपना देखा था वो अटल जी की सरकार में 25 साल पहले पूरा हुआ था और अब बीते 25 वर्षों की यात्रा के बाद आज उत्तराखंड जिस ऊंचाई पर है उसे देखकर हर उस व्यक्ति का खुश होना स्वाभाविक है जिसने इस खूबसूरत राज्य के निर्माण के लिए संघर्ष किया था।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज लुआंडा में अंगोला के राष्ट्रपति जुआओ लॉरेंसो के साथ व्यापक द्विपक्षीय चर्चा की। दोनों देशों ने मत्स्य पालन, जलीय कृषि, समुद्री संसाधनों और वाणिज्य दूतावास संबंधी मामलों में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापनों का भी आदान प्रदान किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस और ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस में शामिल होने के अंगोला के निर्णय का स्वागत किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने छात्रों का आह्वान किया है कि वे निर्भय होकर मेहनत और लगन के साथ कार्य करें। वे मैसूरू में एक निजी संस्थान के स्नातक विद्यार्थियों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने छात्रों से अपने ज्ञान का विस्तार करने और अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने को कहा। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने सऊदी अरब की 3 दिन की आधिकारिक यात्रा पूरी की है। श्री रिजिजू ने सऊदी अरब के हज और उमराह मंत्री तौफीक बिन फवजान अल रबिया के साथ द्विपक्षीय बैठक की। दोनों मंत्रियों ने हज यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। दोनों पक्षों ने जेद्दा में हज 2026 के लिए भारत और सऊदी अरब के बीच द्विपक्षीय हज समझौते पर हस्ताक्षर किए। आईएसएसएफ विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप में पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में भारत के अनीश भनवाला ने रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। उन्होंने फाइनल में कुल 28 निशाने लगाए। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड में शीतलहर चलने का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वी राजस्थान में भी ऐसा ही मौसम बना रहेगा। अगले 2-3 दिन में पूर्वोत्तर राज्य के न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने का अनुमान है। दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता आज बेहद खराब रही। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।